ओम शांति। पिछले 3-4 दिनों में सहज राजयोग के कई प्रवचन आप सबने सुने हैं और योग लगाने का अभ्यास भी किया होगा, कुछ एक ने अच्छे अनुभव भी किए होंगे। सहज योग जो स्वयं परमात्मा पिता ने हमको सिखाया, वो इतना सहज है कि आप चलते फिरते खाते पीते हर कर्म करते योग लगा सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि ये सहज राजयोग कर्म योग स्वतः और सहज योग है। तो योग की विधि सभी ने अच्छी तरह से सीखी, सीख गए हो आप लोगों को? योग के अच्छे अनुभव हुए? हाथ उठाओ। लगता है योग की नहीं लगता है? योग अगर लग गया तो योग की शक्तियां आपके पास जमा हो जाएंगी, और जब शक्ति किसी के पास होती है तो उसका प्रयोग करना होता है। प्रयोग करने के पहले देखना होता है कि मेरे पास वो शक्ति है। तो आज जो मुझे विषय दिया है योग का प्रयोग, तो योग का प्रयोग करने वाले योगी पहले ये तो देखें कि मेरा योग यथार्थ है, विधि पूर्वक है, योग लगता भी है या नहीं। तो जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, क्योंकि योग का बड़ा सरल अर्थ आपको बताया गया होगा, योग माना याद, योग माना कनेक्शन, योग माना जोड़। तो जब हम आत्मा अपने पिता परमात्मा को याद करते हैं तो याद से कनेक्शन जुट जाता, संबंध जुटने से, कनेक्शन जुटने से सर्व प्राप्तियां होने लगती हैं। और कनेक्शन जोड़ने की सरल सहज विधि कौन सी है? विधि कौन सी बताई गई? जब भी आप योग अभ्यास में बैठें, अभ्यास के अंदर, कर्म के अंदर अलग प्रकार के संकल्प होते हैं, लेकिन जब योग में हम बैठते हैं तो पहली स्मृति, मैं इस देह से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। जब इस भ्रकुटी आसन पर अपने चमकते हुए स्वरूप को देखते हैं तो एक बड़ा अच्छा अनुभव होने लगता है, जैसे देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, मैंने ये देह धारण की है, मैं अलग हूँ। ये देखने वाली शक्ति, बोलने वाली शक्ति, सुनने वाली शक्ति, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। जब अपने स्वस्वरूप को हम देखते हैं तो स्वस्वरूप को देखते स्वधर्म में टिक जाते। हमारा स्वधर्म क्या है? अभी तक हम अपने आप को समझते थे हम इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, इस कुल के हैं, लेकिन आत्मा का स्वधर्म, स्व का धर्म है शांति, प्रेम, पवित्रता। तो जब हम अपने स्वरूप और स्वधर्म में स्थित होते हैं तो उस स्थिति में स्थित होते ही परमात्मा की याद आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आत्मा का असली पिता, स्व का पिता, वो भी जैसा मेरा स्वरूप है वैसा उसका है। तो स्व पिता कहाँ रहता है उसके घर की भी याद आती है और उसके स्वरूप की याद आती है। तो योग अभ्यास के लिए 4 बातों को सदा ध्यान पर रखना। पहला, जब अभ्यास में बैठते हैं तो मेरा स्व स्वरूप क्या है? मैं एक लाइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, मैं इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान इस शरीर की मालिक आत्मा हूँ। ये चिंतन करना पड़ेगा और चिंतन करते करते उस स्वरूप में टिकेंगे तो शांति, प्रेम, आनंद जो मेरा निजी गुण है वही मेरा स्वधर्म है। और जब स्वधर्म में स्थित होकर के आत्मा मन और बुद्धि की मालिक बनती है मन बुद्धि और संस्कार आत्मा की तीन शक्तियां आपको बताई गई, चैतन्य शक्तियां, बाकी ये सब कर्म इंद्रियां। तो जब आत्मा की मूल शक्तियों पर अपना नियंत्रण हो जाता तो सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति। अगर इस संकल्प शक्ति पर आपने विजय प्राप्त कर ली, कहना मानने लगा संकल्प, आपका मन आपका कहना मानने लगा, तो मन को आत्मा कहती है कि तू मेरी पहली शक्ति है और तुम परमात्मा का ध्यान करो, वहां मुझे ले चलो। भक्ति मार्ग में एक शब्द आता है अंतःवाहक शरीर, अंतर मन वाहन। आत्मा का जो निजी वाहन है वो मन है। यहाँ बैठे बैठे आपको हम कहें आप अपने देश में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने घर में या अपने व्यवसाय में, जहाँ जो आपका व्यवसाय है, यहाँ बैठे बैठे आप चले जाओ तो आपके पास कौन सा वाहन है? यहाँ बैठे हुए जाने के लिए आपका वाहन कौन सा है? मन, संकल्प। उस संकल्प को हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं, और उस तीसरे नेत्र से हम अपने घर में, अपने परिवार के बीच में, अपने खेत में, अपने दुकान में, अपने बिजनेस में पहुंच सकते हैं। ये तो प्रैक्टिस सबको है। यहाँ बैठे हुए जाने के लिए स्थूल में कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कोई को कोई चीज की डिमांड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर आत्मा का संबंध होता है, जहाँ पर स्नेह होता है, जहाँ से कोई प्राप्तियाँ होती हैं, वहाँ पर वो जाता और आता रहता है, अपने आप जाता है। तो जैसे आप अपने मन को एक सेकंड में किसी स्थान पर ले जा सकते हो, ऐसे अनुभव होने लगता है जैसे मैं वहाँ पर पहुँच गया, मैंने वो चीज़ देखी, अनुभव की। तो इस अंतर मन वाहन को, इस मन वाहन को इस साकार जगत से पार ले जाना है। ये जो सूर्य चांद तारा गणों की दुनिया है, ये प्रकृति के जो पांच तत्व हैं, इस आकाश मंडल से भी पार अपने मूल वतन में, अपने सूक्ष्म वतन में, जहां से हम आत्मा इस सृष्टि पर आई हैं, हम बुद्धि और मन के विमान से वहां पहुंचती हैं। बुद्धि से, आत्मा तो इस शरीर से अलग नहीं होगी, वो तो इसी में रहेगी, लेकिन मन और बुद्धि एक सेकंड में उसको सामने अनुभव करने लगता है। और जब उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उससे मिलन होने लगता है, तो उसकी सारी शक्तियां मेरे अंदर ट्रांसफर होने लगती हैं। परमात्मा अगर शांति का, प्यार का, सुख का, आनंद का सागर है, तो किसी स्थान पर अगर आप जाएंगे, मान लो यहाँ से आप माउंट आबू जाते हैं, तो माउंट आबू की जो ठंडक है, ठंडी हवाएं हैं, आपको जाते ही आपको कोई कहे या न कहे, आपको लगेगा कि हम एक पहाड़ी पर, एक चोटी पर आ गए, ऊंचाई पर आ गए, इसलिए ठंडी हवाएं मिल रही हैं। आप सागर के किनारे जाएंगे, आपको साइलेंस का, शीतलता का, उसकी लहरों का स्वतः अनुभव होने लगेगा। तो जिस स्थान पर आत्मा पहुंचती है, उस स्थान की अनुभूतियां होने लगती हैं। तो मेरा योग लगा या नहीं लगा, मेरा कनेक्शन जुटा या नहीं जुटा, उसकी निशानी क्या हो गई? परमात्मा अगर शांति का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है, और उसके साथ मैं आत्मा कनेक्ट हुई, उसके को याद करने लगी, तो शांति की लहरें, प्यार की लहरें, सुख की लहरें अपने आप अनुभव होने लगेंगी, ये निशाने दिखाई देगी। और वो अगर प्राप्तियां आत्मा करती रहती है, उसका कनेक्शन उसके साथ जुटता है, तो वो सब गुण अपने जीवन के अंदर उतरते जाते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे कनेक्शन जुटते ही, मान लो पावर हाउस लाइट दे रहा है, पावर दे रहा है, और हमारे पास माइक है, पंखे हैं, बिजली ट्यूब है, सब कुछ साधन है, लेकिन बीच में अगर कनेक्शन कहीं लूज हो गया, कनेक्शन अगर कहीं ठीक नहीं जुड़ा, तो हम पावर हाउस को दोष नहीं दे सकते, कनेक्शन को ठीक करेंगे। और कनेक्शन ठीक हुआ, कनेक्शन ठीक जुड़ गया, तो लाइट तो आनी ही है, अगर पावर हाउस चल रहा है तो। तो परमात्मा पावर हाउस है और उस पावर हाउस से मेरे पास पावर तब आती है जब कनेक्शन ठीक जुड़ता है। और कनेक्शन जोड़ने की विधि बड़ी सरल बताई गई, आपने सीख ली होगी कि इस देह से डिटैच हो जाओ, अपने आप को आत्मा निश्चय करो। जैसे ये कनेक्शन जोड़ने के लिए ये जो रबड़ है तार के ऊपर, इस रबड़ को पहले छील देते हैं, हटाते हैं, फिर इसके अंदर की तार आगे वाली तार से जोड़ गए, कनेक्शन जोड़ा और करंट आने लगी। तो ऐसे ही परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने की सरल विधि क्या हुई, आज तक हमने भगवान को तो याद किया भक्ति के अंदर, लेकिन इस विधि को नहीं अपनाया। हम साकारी देहधारी बने रहे और उसको हमने भले निराकार भी माना तो कनेक्शन जुटा नहीं, बिना परिचय बिना संबंध के याद करने से प्राप्ति नहीं हुई। तो जब ये एक विधि हमको मिल गई, अब इस विधि में सिर्फ संकल्पों पर नियंत्रण चाहिए, कंट्रोल चाहिए। और आप सब जानते हैं संकल्पों पर तीन चार बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर उस पर अटेंशन है आपका तो मन बहुत स्थिर हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, आप जैसा कहोगे वैसा करने लगेगा। आपने सुना होगा कहते हैं मन एक घोड़ा है, हम योग में बैठते हैं तो घोड़े की तरह इधर से उधर भटकाता है, भटकता है, भाग जाता है एक मिनट में। अगर लगाम उसकी हाथ में है तो कंट्रोल हो सकता है, अगर लगाम ही छूट गई तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए परमात्मा भी हम सबको कहते हैं अगर मन तेरा घोड़ा है तो उसकी लगाम हाथ में रखो, और वो लगाम है परमात्मा की श्रेष्ठ मत, श्रीमत जिसको हम कहते हैं। अगर श्रीमत के प्रमाण हम कर्म कर रहे हैं तो मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो श्रीमत क्या है वो मैं तीन चार बातें आपको सुना देता हूँ, नोट कर लेना अपने पास, क्योंकि मन को कंट्रोल करना है तो पहली श्रीमत है जैसा अन्न वैसा मन। अगर आपका अन्न ठीक नहीं है, आप जो खा रहे हैं वो बड़ा तामसिक है, बड़ा राजसिक है, बड़ा तला गला अथवा नॉनवेज है, इधर उधर का भोजन पेट में जा रहा है, हिंसा किया हुआ भोजन पेट में जा रहा है, तो उसकी जो दुख दर्द की चीख और पुकार है आप वो खा रहे हैं, आपका मन कभी शांत नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा। इसलिए परमात्मा की श्रीमत है बच्चे शुद्ध शाकाहारी बहुत पवित्र भोजन योग में बनाया हुआ खाओ, इधर उधर का इंटरेस्ट नहीं रखो, वो आपके स्वास्थ्य को और आपके मन को खराब करता है। तो पहली श्रीमत अगर आपने मान ली तो आपका मन बड़ा शुद्ध होता जाएगा, एकाग्र होता जाएगा, उसका भटकना और उसका व्यर्थ का सोचना बंद हो जाएगा। दूसरी श्रीमत परमात्मा की है जैसा संग वैसा रंग। आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से हम सब आदतें हमारी बिगड़ती गई, परिवर्तन होती गई, उसका मूल कारण बचपन में तो कोई बुरी आदतें नहीं थी, शराब पीने की, सिगरेट पीने की, जुआ खेलने की, गंदी बातें करने की, कैसे आती गई? अगर ऐसे जुआनी के साथ, ऐसे शराबी के साथ, बीड़ी सिगरेट पीने वाले के साथ हमारा उठना बैठना हुआ, बातचीत करना हुआ, तो धीरे धीरे वो अपने संग का रंग मुझे लगा देगा। इसलिए कहते हैं जैसे संगत में जाओगे वैसा रंग लग जाएगा। इसलिए अगर हमको अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाना है तो एक शब्द आता है सत्संग। अब सत कहते हैं परमात्मा को, बाकी आजकल के व्यक्तियों के संग में तो कहीं न कहीं कोई न कोई देहमान की बातें हैं। गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा ही सत्य है। तो उस सत्य के संग में कुछ समय रहो और उसके महावाक्यों का संग करो, क्योंकि जो हम देखते और पढ़ते हैं उसका भी बहुत असर मन के ऊपर पड़ता है, संगत का भी असर पड़ता है, और जो हमारी लिखाई पढ़ाई है, जिस प्रकार का साहित्य है, जिस प्रकार आज टीवी के अंदर गंदे गंदे चित्र अश्लीलता है, अगर इस प्रकार के आपको कोई देखने की सुनने की पढ़ने की शौक है और आपको कहा जाए भगवान का ध्यान करो तो मन कहाँ जाएगा, जिस प्रकार का इंटरेस्ट है उधर भागेगा। इसलिए मन को शुद्ध बनाने के लिए, मन को परमात्मा में टिकाने के लिए अपनी इस परहेज को पालन करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे कोई चित्र, ऐसी कोई बातें न देखनी है, न पढ़नी है, न ऐसी संगत में बैठना है, क्योंकि संग का रंग लग जाता है और बुरे का संग तो बुरा होगा ही, अच्छे का संग ही अच्छा होगा। इसलिए जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कहते हैं आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। वास्तव में गीता में जो भगवान ने महावाक्य उच्चारण किए हैं, इसके अनुसार आप सब देखना, हमारा कोई दूसरा शत्रु नहीं है। अपने ही व्यर्थ और नेगेटिव संस्कार, अपनी ही बुराई, पुराने स्वभाव मुझे आत्मा को परेशान करते हैं, वही शत्रुता है। अगर कोई ऐसी आदत बनी हुई है बुरा देखने की, बुरा सोचने की, बुरा बोलने की, तो वो आदत ही हमें परेशान करती है, दुखी करती है, मन को परेशान करके भटकाती है, भगवान में ध्यान नहीं करने देती, योग नहीं लगने देती। तो इसलिए हरेक अपने आप से ये बात जरूर करे कि मैं अपने साथ मित्रता करूं, माना अच्छा सोचूं, अच्छा संग करूं, अच्छा खाऊं, अच्छी संगत में रहूं, तो क्या होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा और मन बहुत शुद्ध बनता जाएगा। मन आपका कहना मानेगा, आप जैसा कहेंगे वैसा करेगा, और जिसने मन को जीत लिया वो विश्व को जीत सकता है। बहुत बड़ी शक्ति है मन की। अब मन की शक्ति को जीतने के बाद अगर मन कुछ सेकंड के लिए भी परमात्मा में टिक गया, परम धाम में लग गया, तो उसकी शक्तियां जो पवित्रता की हैं, शांति की हैं, प्यार की हैं, वो आपके अंदर आ जाएंगी और आपके जीवन से वो दिखाई देने लगेंगी। प्रयोग क्या हुआ, प्रयोग हो गया कि आपके व्यवहार में जो आत्माएं आए उनको सुख का, शांति का, प्यार का अनुभव होने लगे, उसकी अशांति समाप्त हो जाए। योग तो ये प्रैक्टिकल सिद्धांत है, योग हमको ये सिखाता है कि हम सब ऐसी शक्ति परमात्मा से लें जो उसके सब गुण मेरे जीवन में उतर आए और दिखाई देने लगे। तो योग का प्रयोग करने के लिए, जैसे एक छोटा सा मिसाल मैं आपको बताता हूं, अगर आप सोलार यहां शायद देख के आए होंगे, देखा है सबने सोलार, यहां का प्रोजेक्ट देखा होगा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट अभी तैयार हो रहा है और जगह जगह पर सोलार की प्लेट्स लगी हुई हैं, सोलार के आधार से ये बिजली का प्रबंध किया गया है, कंप्यूटर का प्रबंध है, मशीनरी चल रही है, लेकिन ये सोलार की एनर्जी को पैदा करने की विधि क्या है, बहुत स्वच्छ कांच, और वो कांच जिधर सूर्य जाता है, परिक्रमा देता है, वो ऑटोमेटिक सूर्य की तरफ घूमता जाता है कांच, मशीनरी के आधार से। कांच स्वच्छ है, उसकी अपनी शक्ति कुछ भी नहीं है, लेकिन स्वच्छ साफ है और सूर्य की तरफ है, तो उसके ऊपर जो सूर्य की किरणें आती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, और वो रिफ्लेक्ट होकर के इतनी तेज गति से तेज हो जाती हैं जो वो पानी को भाप में बदल देती, बैटरी को चार्ज कर देती, और वो बैटरी चार्ज होकर के बिजली का काम कर रही है, सोलार का काम कर रही। यही प्रयोग है। परमात्मा की शक्तियां तो सब जगह आप कहते हो हैं, लेकिन अगर मेरा कांच अस्वच्छ है, मेरा कांच गंदा है, मेरा कांच उसकी तरफ नहीं है, तो उसकी शक्तियां आपके ऊपर कहां से आएंगी, और आएंगी भी मान लो कोई के ऊपर तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, दूसरे तक नहीं जा सकती। तो प्रयोग करने की विधि क्या हुई कि आप अपने मन और बुद्धि रूपी कांच को बड़ा स्वच्छ बनाओ, पहले इन बातों से स्वच्छ हो जाएगा जो मैंने आपको बताया ना। अगर कोई के अंदर ऐसी कोई बुरी आदत हो, शराब पीने की, सिगरेट पीने की, मांस खाने की, बुरे संगत में जाने की, बुरा देखने की, तो आज बाबा के इस दरबार में क्या करना, बाबा के कमरे में जाओ और बाबा को बोलो, बाबा जैसे तीर्थ पर जाते हैं ना तो कुछ न कुछ दान दे करके आते हैं, तो इस महातीर्थ पर अपनी कोई न कोई बुराई दान में दे देना, ये ले लो, अब मैं इसको रिटर्न नहीं लूंगा, मैं आपको देता हूं, तो बाबा आपकी उस बुराई को समाप्त कर देगा, सदा के लिए वो स्वाहा हो जाएगी, कांच साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, और जब आप योग में बैठोगे, चलोगे, फिरोगे तो बाबा की किरणें आपके ऊपर डायरेक्ट आने लगेंगी। योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्वच्छ कांच के ऊपर किरणें आएंगी। और जब बुद्धि से कनेक्शन जुटा हुआ है, उसकी तरफ हमारा कांच है कि वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, हम इस सृष्टि नाटक में पार्ट बजाने के लिए आए हैं और हमको उसके साथ फिर जाना है उसके पास, चिंतन है अच्छा। तो परमात्मा की जो किरणें आएंगी वो फिर कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट कर सकते हो आप, किधर करोगे? कंट्रोल में रहेंगे, मन को कंट्रोल में रखेंगे तो कहाँ पर प्रयोग करो? सबसे पहले आपके जो निजी संस्कार हैं वो आप हरेक जानता है। मेरा जो बुरा संस्कार है उसको कोई बताए या न बताए सब जानते हैं, भले कई बार पता नहीं चलता है संघ में रहने से, वातावरण में रहने से। और क्यों नहीं रहता है? क्योंकि देह अभिमान का एक बहुत बड़ा आवरण उसके ऊपर आ गया है। गुस्सा है, कोई कहेगा आप गुस्सा करते हो तो और गुस्सा आ जाएगा, मैं थोड़ी गुस्सा करता हूं। कोई गलत काम कर रहा है आप उसको कह दोगे आप ये क्यों करते हो, मैं कहां करता हूं, मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी रियलाइजेशन की, महसूसता की शक्ति खत्म हो गई है। अब वो महसूसता की शक्ति तभी आती है जब आत्मा अपने स्वधर्म को पहचानती है। अरे मैं तो पवित्र स्वरूप हूं, ये जो मेरे अंदर नेगेटिविटी आई, ये जो बुराई आई, ये इस तमोगुणी वातावरण से, बुरे संग से आई। अब मुझे महसूस करना है कि मैं तो एक पवित्र शुद्ध आत्मा हूं, मैं परम धाम घर से इस सृष्टि मंच पर आई हूं, मैं जब आदि में आई थी तो देव आत्मा थी, और मुझे परमात्मा कह रहे हैं बच्चे इस कलयुग के बाद सतयुग आएगा और उस सतयुग में आपको देवता बनना है। अब देवता बनना है तो दिव्य गुण अभी धारण करने, तो जो अवगुण है, जो बुराइयां हैं, परमात्मा की शक्तियों को ऐसे एकाग्र करके उन बुराइयों पर आप रिफ्लेक्ट कर दो, वो बुराई समाप्त हो जाए। किसी को बोलने की जरूरत नहीं, कुछ मिनट के लिए मन को एकाग्र करो, बाबा की शक्ति लो। और जैसे कोई ऑपरेशन करना होता है ना, डॉक्टर लोग आजकल चीर फाड़ कम करते हैं, लेजर किरणों का प्रयोग करते हैं। लेजर के द्वारा बड़ी से बड़ी पथरी को कट करके निकाल देते हैं। साइंस निकली आज, विज्ञान है, लेकिन साइंस निकली कहां से? साइलेंस से ही निकली। अगर कोई साइंटिस्ट साइलेंस में न जाए, एकाग्रता का अभ्यास न हो, तो रिसर्च नहीं कर सकता। निकली साइलेंस से है, लेकिन साइलेंस वाले अपने ऊपर प्रयोग नहीं करते। अब इस योग में आपको इतने गहरे साइलेंस में जाना है जो आपको अपनी कमियां दिखाई देने लगें, प्रयोग करो और उनको समाप्त कर दो। कैसे दिखाई देंगी कमियां? इसके लिए तीन चार बातें प्रैक्टिकल की आपको सुनाता हूं। जैसे पानी का बहाव, पानी कहीं बरस गया और बहते बहते किसी एक स्थान पर इकट्ठा हुआ, तो जब इकट्ठा होता है तो वहां पर बहुत कण मिट्टी के, धूल के, जहां से आ रहा है वो सब इकट्ठा होकर के एक जगह पर खड़ा हो गया। जब इकट्ठा हुआ तो उसमें तो बहुत सारे प्रकार की मिट्टी, धूल है, मैला है, लेकिन अगर उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, हिलाया डुलाया न जाए, तो धीरे धीरे उस पानी की जो मिट्टी है, जो कण है, वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। वो स्थिर होने के बाद, एकाग्रता के बाद स्थिर हुआ और स्थिर होने के बाद स्वच्छ हो गया। अब स्वच्छ जब हो गया तो उसके पीछे अगर 50 फुट गहरा पानी है, आप उसमें 5 का 10 का पैसा डाल दो, सिक्का डाल दो, तो आपको कितना बड़ा दिखाई देगा? 50 फुट गहरे पानी में भी इतना स्पष्ट दिखाई देने लगता है। एकाग्रता से के बाद स्थिरता चाहिए मन की, और जब मन स्थिर हो जाता है तो स्वच्छ हो जाता है, और जब स्वच्छ हो जाता है तो स्पष्ट हो जाता है। आप जो हैं, जैसे हैं, आपको कोई को बताने की और कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप गलत हैं, आप अच्छे हैं। आप अपने आप को जान सकते हैं मैं कैसा हूं। मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी आई है वो पता चलेगी, महसूस होगी। अब जब महसूस हो जाएगी तो जरूर बदलेंगे अपने को, ये मेरी बुराई है, इसके कारण ही सारा टकराव हो रहा है, दुख दर्द बढ़ा हुआ है, घर घर में झगड़े हो रहे हैं, व्यक्ति महसूस नहीं करता, और महसूस न करने का कारण है उसका अपना अहम। मैं बड़ा हूँ, मैं मुखिया हूँ, मैं ये हूँ, मैं बहुत बुद्धि वाला हूँ, मैं अनुभवी हूँ। अब इस मैंपन ने उसको महिला बना दिया है। जिस दिन से वो अपने आप को महसूस करेगा कि मैं तो एक पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ, ये तो सब देह के देह अभिमान का आवरण मेरे ऊपर आ गया, उस दिन अपने को स्वच्छ कर लेगा, स्पष्ट हो जाएगा। और जब स्पष्ट हो जाएगा तो अपने आप को देखेगा और बाबा को देख लेगा। इन नेत्रों से बाबा नहीं दिखाई देगा। आप बैठो योग में, कहो बाबा को देख लें, क्या देखोगे? बिंदी देखोगे, क्या मिलेगा आपको? देखने की चीज नहीं है ये अनुभव करने की चीज। जब आत्मा अपने स्वस्वरूप को देखने लगेगी तो बाबा भी स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो यहां पर योग अभ्यास के अंदर आपके अंदर इतनी स्थिरता हो, इतनी एकाग्रता हो, जो स्पष्टता से आप खुद को देख करके अपनी कमियों पर अपने लेजर किरणें संकल्प की डालो। संकल्प कमजोर है तो बाबा का संकल्प साथ में ला लो, तुम तो सर्वशक्तिमान है, मेरा पिता है, तुम मेरे साथ है, ये मेरा संस्कार खत्म हो जाए। पहले अपने पर प्रयोग करो। आपके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, नफरत है, वैर है, आलस्य है, अलबेलापन है, कोई भी कमी कमजोरी संस्कारों की है सबके अंदर, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई न कोई कमी कमजोरी सब में है। लेकिन जब तक वो ये महसूस नहीं करता ये मेरी कमजोरी खत्म हो जाए, तब तक खत्म नहीं होगी। पहले महसूस करो। महसूस करने के बाद, जैसे आपको एक छोटा सा मिसाल बताता हूं, आपने वाल्मीकि की कहानी पढ़ी होगी। वाल्मीकि एक डाकू, पहले जो उसका पहला नाम था उसके अंदर वो डाकू का काम करता था, लोगों को लूटता था, पैसा इकट्ठा करता था, मारता था और अपने परिवार को चलाता था। एक दिन कुछ संतों को, साधुओं को उसने पकड़ लिया, उसको लूटने गया तो उन्होंने कहा, अरे भाई तुम किसके लिए सब कर रहा है गलत काम? तो कहने लगा, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, परिवार को पालना है मुझे। तो महात्माओं ने, संतों ने कहा कि भाई तुम जिसके लिए करे उसे पूछो तो, ये इसका जो हिसाब किताब है, इसका जो पाप है, इसका जो दुख दर्द है, क्या आप वो भी साथी बनोगे उसमें? तो समझा, ये तो मेरे को छुड़ाने के लिए, अपने को भागने के लिए कह रहे हैं। तो बोला, आप, मैं भागूंगा नहीं, आपने मुझे पकड़ लिया, आप भले मुझे बांध दो यहां, कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मेरा प्रश्न है वो अपने परिवार वालों से पूछ के आ जा। कहते हैं उसने ऐसा ही किया, उन संतों को एक रस्सी से बांध दिया और फिर अपने घर में गया तो बोलने लगा परिवार वालों से कि मैं इतना सारा मार पीट करके, इतना सारा डाका डाल करके आपके लिए, आपके जीवन निर्वाह के लिए पैसा लाता हूं, इसका हिसाब तो होगा दुख दर्द का, पाप का, पाप के खाते में आप सब सहयोगी बनेंगे? तो परिवार वालों ने कहा, हम क्यों सहयोगी बनेंगे, हमने तुमको थोड़ी कहा ऐसे पैसा कमा के लाओ, ये तो तुम्हारा धंधा है, तुम जो करना चाहो करो। तो जब उसको ये महसूस हुआ, अंदर बात चली गई कि अरे ये जो पाप कर रहा हूं मैं, इसमें कोई सहभागी नहीं बनेगा, पाप की सजा मुझे खानी पड़ेगी, तो तुरंत संतों के पास आया, उनको छोड़ दिया और उसने संकल्प ले लिया, अब मुझे पाप नहीं करना है, अब मुझे ऐसा काम नहीं करना। फिर क्या किया, महसूसता के बाद समझ मिली और समझ के बाद उसने तपस्या की, और कहते हैं इतनी तपस्या की जो उसके घर शरीर के ऊपर दीमकों ने इतने छोटे छोटे बाल बना दिए, घर बना दिए। माना उसके लिए कितना सहन किया, कितना सामना किया कि अपने को मुझे चेंज करना है, मेरी आदत खत्म हो जाए, मेहनत की और फिर उसको वरदान मिल गया, वो वाल्मीकि का टाइटल मिल गया, एक विद्वान बन गया और उसने इतनी बड़ी रामायण लिख डाली। कहने का भाव है, परिवर्तन कैसे आया, क्या प्रयोग किया उसने, पहली समझ मिली, फिर महसूस किया, फिर तपस्या किया और तपस्या के बाद सहन किया तपस्या में, और सहन करके वो एक विद्वान बन गया। बहुत अच्छा एक नामी ग्रामी व्यक्ति बन गया। परमात्मा भी हम सबको कहते हैं, बच्चे कोई भी आदतें हों, कैसी भी बुरी आदतें हों, सब में थी देहमान के कारण, आप ऐसा प्रयोग करो कि वो आदतें सदा के लिए समाप्त हो जाएं। उसके लिए मेडिटेशन करो, तपस्या है ये। सहन करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे, अरे ब्रह्मा कुमारी में जाया गया था, बदल गया इतनी जल्दी, क्या इनको पता नहीं जादू लगा दिया। लेकिन ये ज्ञान का ऐसा जादू है जो व्यक्ति को परिवर्तन कर देता। खाना पीना बोलना चालना जो भी अस्वच्छता थी, अदिव्यता थी, वो दिव्यता में बदल जाती, ये परिवर्तन आ जाता। तो पहला प्रयोग करना अपने निजी संस्कारों पर। दूसरा प्रयोग हमारे शरीर के अंदर वर्तमान समय प्रकृति के कारण और पिछले पाप कर्मों के कारण बहुत सारे शारीरिक भोगना बीमारी के रूप में आ रही है, और वो बीमारियां अपने आप में परेशान करते, उसकी कोई दवाई नहीं निकल रही। जितनी प्रकार की दवाइयां निकाली जाती हैं, उसकी नई प्रकार की बीमारी निकल आती। डॉक्टर बढ़ते जाते, हॉस्पिटल बढ़ते जाते और रोग भी बढ़ते जाते। इसको समाप्त करने के लिए, अपने कर्म भोग पर विजय पाने के लिए, हिसाब किताब जो शरीर के आते हैं उस पर विजय पाने के लिए भी आप मेडिटेशन का प्रयोग करो। हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा इस समय एक प्रोग्राम चल रहा है कैड नाम से, हार्ट के पेशेंट को मेडिटेशन के द्वारा बताया जा रहा है, मेडिटेशन, डाइट और एक्सरसाइज, तीन चीजों को मिला के कैड प्रोग्राम बनाया गया है। और इस कैड प्रोग्राम के अंदर जिनकी 99% आर्टरी ब्लॉक है, ब्लॉक हो गई, उनकी एंजियोग्राफी कराई जाती है पहले, और एंजियोग्राफी करा के वो यहाँ आते हैं, बताते हैं डॉक्टर को, तो उनको उसके बाद ट्रीट किया जाता है इस तरह से कि मेडिटेशन करो और शुद्ध और हल्का भोजन जो यहाँ पर सिखाया जाता है, जिसमें तेल कम है, मसाले कम है, वो भोजन इनको बना के सिखाया जाता है, खिलाया जाता है। तो अभी 100 पेशेंट यहाँ हैं, चल रहा है ये कैड प्रोग्राम, मैं उनसे कल मिल रहा था। उनकी आर्टरी 6 मास में एकदम खुल जाती बिना ऑपरेशन के, कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, लेकिन उनको पूरा फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है एक दिन फॉलो किया दूसरे दिन नहीं किया। अमृत वेला, सवेरे 4 बजे योग करना पड़ता है, मुरली अध्ययन करनी पड़ती है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, बहुत शुद्ध शाकाहारी भोजन लेना पड़ता है, नियमित व्यायाम करना पड़ता है। कुछ नियम तो हैं, बिना नियमों के तो नहीं आता है। लेकिन अगर वो नियमों का पालन करके मेडिटेशन करता है तो 7 जो गुण हैं आत्मा के, वो 7ों गुणों को हम अपने ऊपर फोकस करते हैं। पवित्रता के गुण को इस फेस पर, ज्ञान के गुण को ब्रेन के ऊपर, मैं 60 में बता रहा हूं, बहुत बड़ा डिटेल है क्योंकि बहुत छोटा क्लास है, मैं 7 बजे पूरा करूंगा। ज्ञान को ब्रेन के ऊपर, पवित्रता को इस फेस पर, कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त ऐसे कहते हैं, शांति को फेफड़ों पर, प्रेम को हार्ट पर, सुख को इस पेट की चर्बी पर, पेट पर, आनंद को हार्मोन्स पर, और शक्ति को ये हड्डी और बोन्स पर, चमड़ी और बोन्स पर। अगर इन 7ों गुणों का विधिवत प्रयोग कोई करता है तो इस 7ों गुण जितना बढ़ते जाते हैं, संपन्न रूप में आ जाते हैं आत्मा के, तो सतोगुणी कहलाती है। और जब वो सतोगुणी स्टेज पर है, सतयुग के अंदर सतोगुणी है, 7ों गुण उसके अंदर भरपूर हैं, परफेक्ट हैं, कोई रोग नहीं है। इसलिए आप देखेंगे देवताओं को कोई डॉक्टर नहीं थे, लक्ष्मीनारायण का कोई वैद्य नहीं था, कोई रोग ही नहीं था, क्योंकि संपूर्ण निर्विकारी थे, संपूर्ण पावन थे, सर्व गुण और सर्व शक्तियों से संपन्न थे, इसलिए रोग ही नहीं था। अभी हमारे पास कोई ना कोई रोग तो सबके पास लगा हुआ है, एक जाता दूसरा आता है, उसका कारण है किसी न किसी गुण की कमी आ गई। और उस गुण की कमी के कारण जब बुराई ने, अवगुण ने प्रवेश कर लिया, क्रोध करने वाला व्यक्ति, हम पूछते हैं आर्टरी क्यों ब्लॉक हुई, कहते हैं कहीं ना कहीं प्रेम में धोखा मिला, गुस्सा आया, बहुत टेंशन पैदा हो गया, खून जम गया, आर्टरी ब्लॉक हो गई। अब उसको खोलने के लिए प्रेम के गुण को बढ़ाना पड़ेगा, और प्रेम का सागर तो बाब ही है, शिव बाबा ही है। अगर देहधारी से प्रेम करोगे तो आज अच्छा है, कल बिगाड़ देगा संबंध, वो प्रेम टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, आपको दिल में जरूर दर्द पड़ेगा। तो इस प्रकार की जब ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है, सिखाया जाता है, तो हमने देखा है कि ये प्रयोग करने से उसकी काया निरोगी बनती है। तो योग के प्रयोग करने के लिए आत्मा को अपने ऊपर बाबा की, सर्वशक्तिमान की, परमात्मा की किरणें लेना है, और किरणें लेकर के जहां कोई रोग है, जहां कोई बीमारी है, उसके ऊपर उन किरणों को डालना है। लेकिन पहले शरीर पर डालने के पहले पहले सूक्ष्म शरीर जो इसके साथ है, मन के साथ, मन एक सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर को बहुत शुद्ध बनाना है, क्योंकि मन की बीमारी से तन की बीमारी पैदा हुई है। तो ये प्रयोग करके आप देखना, बहुत सारी बीमारियां जब मेडिटेशन करते हैं, मन को एकाग्र कर लेते हैं, तो ठीक हो जाती हैं। ज्यादा दवाई के पीछे, डॉक्टरों के पीछे भागना नहीं पड़ता। कोई बहुत जरूरी है तो करो, लेकिन मेडिटेशन का प्रयोग करो तो आप देखेंगे हमारा मन स्वस्थ है और तन भी अच्छा हो जाता है। अब तीसरा प्रयोग करो, आजकल संबंध जो हमने बनाए हैं कहीं ना कहीं का कोई कारण से, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, कोई स्वार्थ के कारण, पैसे के कारण, उन संबंधों में बिखराव है, टकराव है। थोड़ा समय बहुत अच्छा चलता है, ऐसे लगता है इनके जैसा कोई नहीं, और जब वो स्वार्थ पूर्ति नहीं होती तो उसके अंदर टकराव शुरू होते हैं, दूरियां बढ़ जाती हैं, बोलचाल बंद हो जाता और विघ्न आने लगते, आगे नहीं बढ़ सकता परिवार, कोई भी काम में सफलता नहीं मिलती, क्योंकि सबका सहयोग नहीं मिलता। सब सहयोगी बन जाए, जैसे आप विद्यालय के अंदर देख रहे हो ना, इतनी बड़ी कारोबार चल रही, आप सब 8,000 लोग आए, बरसात के बीच में खाना पीना ठीक मिला ना सबको, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कोई कहने वाला है, कोई डायरेक्शन देने वाला है, देख रहे हो कोई डायरेक्शन देता है किसी को, सब ऑटोमेटिक चल रहा है। कैसे चल रहा है? ये योग की शक्ति, संकल्प की शक्ति। हमारी निमित्त जो दादियां हैं, जो हमारे बड़े हैं, परमात्मा है जो इस विद्यालय का स्थापक है, वो अपने संकल्प से बच्चों को प्रेरित करता है, सबको प्यार देता है, सबको स्नेह देता है, सबको सत्कार देता है, सबको आगे बढ़ाता है, इसलिए सब समझते हैं मेरा यज्ञ है, मुझे करना है, टकराव है ही नहीं। और जहां टकराव नहीं है वहां हर कार्य अपने आप स्वतः होता है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि बाबा हमारा साथी है। तो जब बाबा को, उस पिता परमात्मा को अपना साथी बना लोगे और उसके साथ से सबके साथ स्नेह का सम्मानजनक व्यवहार करोगे तो परिवार सुखमय बन जाएगा, सब सहयोगी बन जाएंगे। ये योग का प्रयोग है, बाबा के योग से ये शक्ति आ जाती है तो सबको हम साथी बना सकते हैं। तो तीसरा प्रयोग आप अपने संबंधों पर करके देखो, आपके सब बहुत प्रिय बन जाएंगे, सब दूरियां समाप्त हो जाएंगी, घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगा, नहीं तो टकराव हो जाएगा। पांचवा प्रयोग, चौथा बताया, पांचवा जो भी है नंबर आप लगा लो, आपके कार्य व्यवहार के अंदर, ऑफिस के अंदर, दुकान के अंदर, नौकर चाकर जहां पर हैं, संबंध हैं, अगर वो बार बार कुछ गलत कर रहे हैं और आप उनको टोकते हो, कहते हो, और संबंध बिगड़ते हैं, और करता है वो, कहना नहीं मानता, और कहते हो हम गुस्से से ठीक कर देंगे, बच्चों को गुस्से से ठीक कर देंगे, संबंधों को ठीक कर देंगे, नौकरों को ठीक कर देंगे, वो थोड़े समय आपके डर के मारे ठीक हो जाता और जब आप चले जाते फिर वही धंधा करने लगता है। अगर सचमुच उनको सहयोगी बनाना है तो आप कुछ समय उनके लिए बहुत शुभ भावना, श्रेष्ठ संकल्प करो। अगर ये नहीं होते तो कैसे कार्य चलता? ये कितने अच्छे स्नेही हैं, कितने अच्छे सहयोगी हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। शुभ भावना का ध्यान दो, ये योग का प्रयोग है। बहुत शुभ संकल्प करो, नेगेटिव नहीं सोचो, ये तो चोर है, ये तो काम चोर है, ये तो करता ही नहीं है, ये तो नुकसान ही करता है। तो नहीं करने वाले को भी आप अपने संकल्प से प्रेरित कर दे तो करने के लिए, ये कला सीख जाओ। बाबा ने हम सबको ये कला सिखा दी है कि कि आपके संगठन के बीच में जो कोई काम करने वाले हैं उसकी विशेषता को नोट करो। हर आत्मा विशेष है, अगर वो नहीं होती तो ये काम नहीं होता, नहीं होगा चल जाएगा। अगर ये संकल्प दे रहे हो तो आज है वो भाग जाएगा कल। हमारे संकल्पों से तो कारोबार चलती है। हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव हो रहा है, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होने लगेगा। आप इसको रिहर्सल करके देखना, जो काम आपका रुक रहा हो, नहीं हो रहा हो, वहां पर आप अपने शुद्ध संकल्प से प्रयोग करो। ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छे संकल्प, बहुत अच्छी विशेषता वाले, अगर ये नहीं होते तो कैसे कार्य चलता। तो जब शुभ भावनाएं आपकी वहां तक जाएंगे, वो व्यक्ति के अंदर वो प्रेरित करेंगी अच्छा करने के लिए। मुख से नहीं बोलो, मुख से बोलने से समझेंगे तो पता नहीं क्या आज हमारे को बड़ाई कर रहा है, क्या बोलते हैं मक्खन लगा रहा है, मक्खन लगाने वाला काम नहीं करो। लेकिन बहुत शुभ भावना, बहुत अच्छी विशेषता है सब में। ऐसा कोई भी आपके परिवार में, आपके बिजनेस में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर कोई विशेषता न हो। कोई तो एक होगी, हिम्मत होगी, दृढ़ता होगी, भावना होगी, सच्चाई होगी, कोई ना कोई विशेषता होगी, तब तो आपने उसको अपने पास रखा है। अब उस विशेषता पर अगर नजर चली जाए, परमात्मा ने हम सबको बताया है, बच्चे 36 गुण माने गए देवताओं के। अगर 36 गुणों में कोई के पास 35 अवगुण हैं, तो भी भगवान उनके 35 अवगुण नहीं देखता है, वो उसका एक गुण देखता है। और सचमुच इस विद्यालय के अंदर उसने जो हम लोगों को लायक बनाया है, मैं तो आपको सच्चे दिल से कहता हूं, उसने एक विशेषता हमारी देखी और एक विशेषता को काम में लगा दिया, उसने सारे अवगुणों को समाप्त कर दिया। आप भी अपने परिवार में कोई भी भाई बहने हैं, कोई भी बच्चे हैं, कोई भी हैं, उनकी एक विशेषता देख करके उनकी महिमा करो, उनकी प्रशंसा करो, उस विशेषता को उनके काम में लगाओ, उसके अंदर सब विशेषताएं आ जाएंगी। ये प्रयोग है, सिर्फ योग नहीं करो उसके लिए, लेकिन शुभ भावनाओं का दान दो। अब अगले प्रयोग कहां पर करो, हम अभी एक प्रयोग करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, जो बताया ना बहन ने, हम ग्राम विकास प्रभाग को देखते हैं। आज हमारे भारत की 70% आबादी गांव में रहती है। शायद यहां भी किसान कोई बैठे होंगे जिनके फार्म होंगे, खेती होगी, खेती करते भी होंगे, कराते भी होंगे, ऐसे जो है हाथ उठाओ, बहुत सारे लोग बैठे हैं। देखो प्रकृति से सबको प्यार है, तीन चीजें अनादि अविनाशी हैं, अगर एक बिगड़ गई तो खत्म खेल। आत्मा अनादि अविनाशी है, ये प्रकृति के पांच तत्व अनादि अविनाशी हैं, और परमात्मा अनादि अविनाशी है। प्रकृति इस समय इतना सारा उथल पुथल क्यों कर रही है, जहां बरसात पड़ती है ना, कहीं 8 इंच पड़ गई, कहीं 10 इंच, एक साथ पड़ गई, क्या हो गया उसके कारण, बाढ़ आ गई, डूब गई खेती, नुकसान हो गया। और कहीं नहीं पड़ रही है तो सूखे में पानी प्यासे लोग मर रहे हैं। आज जलवायु परिवर्तन हम सब जानते हैं, पांचों तत्व आज व्यक्ति को परेशान करें, आत्मा को परेशान करें, क्योंकि आत्मा ने उनका बहुत दोहन किया है, विकारों के अधीन होकर के, स्वार्थ के अधीन होकर के, कल कारखाने बनाए, आबादी बढ़ा दी, जनसंख्या विकारों के कारण बढ़ गई, उनके लिए कल कारखाने, मकान, शहरीकरण, उनकी जमीन जो प्रकृति की देन थी, जंगल काट दिए, घर बना दिए, क्या हुआ, जंगल कटे, बरसात का संतुलन बिगड़ गया। अब परमात्मा कहता, बच्चे प्रकृति को जो तुमने नुकसान दिया वो तुम्हारा बदला ले रही है। आज इतने बड़े भूकंप आ जाते, बाढ़ आ जाती, सूखा पड़ जाता, ज्वालामुखी फट जाता, कितना नुकसान होता है, और किसको सहन करना पड़ता, व्यक्ति को, आत्मा को। अब परमात्मा कहते हैं, हे मेरे बच्चों, अपने आप को बहुत शुद्ध और पवित्र बनाओ और इस प्रकृति को दान दो, शांति का, प्यार का, सुख का, ये भी देवता है। कहते हैं ना, सूर्य देवता है नमा, अग्नि देवता है नमा, वायु देवता है नमा। देवता इनको क्यों कहते हैं, है तो एक जड़ तत्व, लेकिन तत्व को देवता कहते हैं क्यों, सदा देते हैं, सदा देते हैं, लेते नहीं कुछ। अब सदा देने वाले को हमने इतना ले लिया उससे, जो उस बेचारे को नुकसान करना पड़ा, परमात्मा हम बच्चों को प्रकृति पति की स्थिति पर लाता है, क्योंकि खुद प्रकृति पति है। कहता है, हे मेरे बच्चे, तुम मास्टर प्रकृति पन बन, प्रकृति पति बनो, मालिक बनो, पहले अपने इस प्रकृति के मालिक बनो। आत्मा की प्रकृति उसके साथ साथ रहती है, पांच ये शरीर पांच तत्वों का बना हुआ पुतला। अब इस प्रकृति के अधीन हम हो गए, क्या कहते हैं, मैं चाहता नहीं हूं, मेरे से गलत हो जाता है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं निकल जाता है, बुरा देखना नहीं चाहता हूं देख लेता हूं। माना ये प्रकृति मुझे अपने अधीन बना चुकी है आत्मा के। जब तक इस प्रकृति को हमने अपने कंट्रोल में नहीं किया, तब तक वो प्रकृति कैसे साथ देगी। तो हम योग के प्रयोग में पहले आत्मा मालिक बन करके इस कर्मेंद्रियों पर अपना कंट्रोल करती और फिर उस प्रकृति को आर्डर करते, जल देवता तुमको नमस्कार, तुम इस धरती माँ में जो मैं बीज डाल रहा हूं इसको समय पर पानी देना, वायु देवता तुम अच्छी तरह से इसको ऑक्सीजन देना, आकाश देवता तुम इसको बढ़ने के लिए फील्ड दे देना। एक एक देवता से मेडिटेशन के अंदर बात करते हैं और उसको बहुत सम्मान देते हैं प्रकृति के तत्वों को, और हमने उसकी रिजल्ट ये देखी है। आपको वंडर लगेगा, ये कोई जादू मंत्र नहीं है, लेकिन चारों तरफ से ओले की बरसात होती है। ओले पड़ते हैं ना इतने बड़े बड़े, सारी फसल नष्ट हो जाती लोगों की, लेकिन जिसने योग के प्रयोग अपने खेत पर किए हैं, योगी बच्चे जहां रहते हैं परमात्मा का ध्वज लहराते हैं, कोई केमिकल यूज नहीं करते, ऑर्गेनिक चीजें डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, केचुए की खाद डालते हैं, कोई जरूरी है तो जैविक दवाइयां भी डालते हैं, लेकिन कोई भी फर्टिलाइजर और कीटनाशक नहीं डालते और मेडिटेशन करते हैं, उसके आगे जाके पेड़ पौधों से बात करते हैं, पेड़ खेत की परिक्रमा लगाते हैं और बहुत अच्छी तरह से परमात्मा की किरणें लेकर के उस खेत को ऐसे देते हैं। चारों तरफ से नुकसान होता है, उस फसल को नहीं होता, वहां ओला पड़ता ही नहीं है। अभी कुछ समय पहले हमने आंध्र प्रदेश में एक प्रयोग कराया था किसानों से, चावल की खेती, वहां चावल ही होता है, करीब 10 किसानों ने चावल की खेती लगाई, पकने पर जब आ गई तो समुद्री तूफान की चेतावनी आई, समुद्री तूफान आने वाला है, और इतनी तेज तूफान आया सारी खेती डूब गई, बाबा की खेती भी जो योगी खेती थी वो भी डूब गई। वो किसान बहुत निश्चय बुद्धि था कि बाबा की खेती को मैंने मेडिटेशन किया है, ये नुकसान नहीं हो सकती है, कैसे खत्म होगी। कहता वो रोज योग करता था और जब समुद्र उतरा, पानी उतरा उसका समुद्र का, वो चावल फिर से खड़ा हो गया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सबकी खेती डूब गई और ये खेती पानी के अंदर से फिर से कैसे हरी भरी निकल आई। उसके लिए हमारे विचार आभा मंडल बनते हैं, हमारी शुभ भावनाएं उसका ओरा बन जाती हैं, कोई भी प्रकृति के तत्व उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। अब ये कहेंगे आपकी काल्पनिक बात हो सकती है, लेकिन मैंने तो प्रैक्टिकल प्रयोग देखे हैं। फैक्ट्री के अंदर एक भाई ने, ज्ञान में चलने वाला, उसने शिव बाबा का ध्वज लहराया और फैक्ट्री के गेट के ऊपर एक बाबा का रूम बनाया। ज्ञान में आया, इस विद्यालय के अंदर आया और फैक्ट्री में करीब 500 लोग काम करने वाले, सबको डायरेक्शन था कि काम पर जाने के पहले हरेक को 5 मिनट यहां मेडिटेशन करना है। गेट पर ही बाबा का कमरा था, मेडिटेशन रूम। मैं उस फैक्ट्री में खुद गया, देख के आया। कहता है यहां किसी की हाजिरी तब लगती है जब पहले वो मेडिटेशन में बैठता है, पहले बाद में हाजिरी करते हैं। सारे तूफान के अंदर फैक्ट्री की कई बिल्डिंगें नष्ट हो गई, कितना नुकसान हुआ हर फैक्ट्री के अंदर, और उस फैक्ट्री का एक पतरा भी नहीं उड़ा, कुछ नुकसान नहीं हुआ। मुझे दिखा रहा था, इतना खुश था कि देखो झाड़ ऐसे कैसे खड़े हैं, सारी फैक्ट्री और सारे शहर के झाड़ कोई टूट गए हैं, कोई खंडित हो गए हैं, लेकिन यहां पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर योग का ओरा है, योग का आभा मंडल है। बाबा की शक्ति काम कर रही है, लेकिन वो तब कर रही है जब आत्मा के विचार बड़े शुद्ध हैं, बड़े पवित्र हैं, जब वो मेडिटेशन वहां चल रहा है, तो ये प्रयोग है। और ये प्रयोग करके हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, इस कलयुग के वातावरण में सुरक्षित रह सकते हैं। केवल प्रयोग करो, बाबा से नहीं मांगो। बाबा देता नहीं, अगर देगा तो सबको देना पड़ेगा। इसलिए बाबा अपने बच्चों को चार मंत्र सिखाता है, मैं उन चार मंत्रों के साथ आपको इस वाणी को विराम दूंगा। एक कहता है, हे मेरे बच्चे, जहां तुम्हारे संकल्प में दृढ़ता है वहां सफलता समाई हुई है। संकल्प को कमजोर नहीं करना, दृढ़ता में सफलता है, निश्चय में विजय है। निश्चय नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है, निश्चय रखो। निश्चय माना बाबा में निश्चय, अपने में निश्चय, अपने श्रेष्ठ कर्मों में निश्चय, विश्वास, विजय आपका जन्म से अधिकार है। हिम्मत है तो मदद है, बिना हिम्मत के भगवान भी मदद नहीं करता। इसलिए हिम्मते बच्चे तो मददे बाप, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। हिम्मत का एक कदम आप आगे बढ़ाओ, हजार गुना मदद करने के लिए बंधा हुआ है। और चौथी बात याद रखना, अगर लगन पक्की है तो विघन ठहर नहीं सकते। अगर बार बार कोई के आगे विघन आते हैं तो चेक करना मेरी लगन कहां पर कम है, लगन को बढ़ाओ। लगन माना भगवान से प्यार, अगर वो लगन बढ़ गई तो क्या करेगा कोई, कोई रोक नहीं सकता। कहते मीरा को लगन लग गई तो कितने भी विघन आए वो पार हो गई। तो हम सब अगर सच्ची मीरा बन करके अपनी परमात्मा से अटूट लगन रखेंगे तो हर विघन को हम सहज पार कर सकते हैं। ओम शांति। चलो तीन मिनट के लिए इस देह से डिटैच हो जाओ, भ्रकुटी आसन पर बैठ करके अपने चमकते हुए दिव्य सितारे को देखो, अपने स्वस्थ स्वरूप में, अपने लाइट स्वरूप को देखते हुए स्वधर्म में स्थित होकर स्वपिता को स्वदेश में याद करो। परमधाम हमारा देश है, मूल वतन, जहां लाइट की दुनिया में वो सितारा, दिव्य सितारा परमात्मा चमक रहा है, उसके साथ मेरा कनेक्शन है। इस संकल्प के साथ हम मेडिटेशन करेंगे।
लगाना हंसते हंसते दर्द पीना प्रभु की प्रेम की ज्योति जगा।